प्रातः क्लास चल रहा था, दो छः 1966 गुरुवार को छठे पेज के मध्यार्ध में बात कर रहे थे भक्ति मार्ग है दुर्गति मार्ग। कोई भगत को अगर ये कहो तो भक्ति दुर्गति है तो लड़ पड़ती है एकदम, बोलते हैं ये तो कोई नास्तिक है। यानी भक्ति दुर्गति है, भक्ति जिससे भगवान मिलता है और ये कहते हैं भक्ति दुर्गति। अरे हाँ हाँ ये तो ठीक है, जब ये भक्ति करते हो तुम्हारी दुर्गति होती है, पति तो होते हो बिल्कुल, जब पूरी दुर्गति हो जाती है तभी तो कहते हो ना ये पति तो पावन आओ। पतितों को पावन बनाने वाले आयो, तो पतित होते हो तब तो कहते हो आओ, से साबित हुआ कि भक्ति करते करते पतित हो गए। फिर बुलाते हो ये पतित पावन आओ, तो भक्ति पतित है ना, भगत पतित है इसलिए पुकारते है ना पतित पावन को। तो बोलता है भक्ति ही अच्छी, क्योंकि भक्तों को पाप पावन आकर के बनाते, बाप कहते हैं बाप आकर तुमको पावन बनाते हैं, फिर ये रावण आकर के तुमको पतित बनाते। अंधश्रद्धा युक्त भक्ति कराते हैं, तो क्या ये पतित माना भक्ति अच्छी हुई, ये तो हो भी नहीं सकता है। तो देखो इस बात में समझने की बुद्धि चाहिए। तो देखो तुम बच्चे अभी आए हो, तुम ये जानते हो कि बाहर अभी तो हम गुरुओं की जंजीरों से छूट गए, ये गुरु भी आसुरी मत करें, तो इस सबकी मत से कोई की भी मत नहीं सिवाय एक बाप की मत। तो श्रीमत श्रेष्ठ मत देने वाला श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ही होगा, जिससे हम श्रेष्ठ बनेंगे। ये लक्ष्मी नारायण ऐसे श्रेष्ठ कैसे बने, ये कोई एक राजा रानी थोड़े ही थे, ये सारी स्वर्ग की राजधानी किसकी मत पर बनी है, कोई तो इनको मत दिया होगा। देवताओं ने कभी लड़ाई बढ़ाई तो की नहीं, ये तो शास्त्रों में झूठ लिखा हुआ है कि दैत्य और देवताओं की लड़ाई लगी, देवताएं लड़ते ही नहीं है। तो ये दैत्य कहेंगे कलयुग में दैत्य शब्द ही बनता है दिति से। दिति अर्थात खंडित हो गई हो, विचारी बन गई हो, विचार की संतान हुए दैत्य। तो दैत्य ठहरे कलयुग में और देवता ठहरे सतयुग में। वहां सतयुग में सत्य होता है, कलयुग में तो सत्य और सती की बात ही नहीं। तो देखो सतयुग वाले इन देवताओं की लड़ाई कैसे लग सकती है? लड़ाई हो सकती है, वो देवताएं भी तो मनुष्य है ना। वो पवित्रता में पवित्र है, नॉन वायलेंस है, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म कहा जाता है। अहिंसा ही उनका परम धर्म है, उस परम धर्म को मान करके ये देवता ही बने। सुख लिए देवताएं हिंसक असुरों से लड़ाई कैसे लड़ेंगे? देवताएं लड़ाई लड़ सकते हैं, फिर देवता का ही पीछे रे किस बात की जीविता? उनमें दिव्यता है तो देवताएं वो लड़ाई कैसे कर सकती हैं? और कहां लड़ाई लड़े, कहां करे लड़ाई? सतयुग में तो लड़ाई की दरकारी नहीं। और वो हुआ त्रेता, तो
रहने दो, छोड़ दो छोड़ दो।
त्रेता में भी 14 कला संपूर्ण होते हैं, सतयुग में भी 16 कला संपूर्ण आत्माएं होती है। ये कलाएं खत्म हो ही जाती हैं कलयुग में। आई मीन ये कलयुग है, ये विविधताएं, ये 16 कलाएं, ये तो खत्म ही हो जाती है। जब ये देवताएं होते हैं तो 16 कला संपूर्ण देवता होती है। वहां सतयुग में असुर कहां से आए? सत्य का युग है, सतियों का युग है, वहां झूठा कोई होता ही नहीं तो लड़ाई क्यों होगी? तो या तो असुर होते या तो देवताएं होते। जब असुर है तो कलयुग है, देवीताएं हैं, देवताएं हैं, अहिंसक हैं तो सतयुग है। तो तुम देखते हो यहाँ देवता कोई है? कहाँ है? और तुम भी तो देवता नहीं हो, ब्राह्मण हो। देवता कहाँ है जो असुरों से लड़ेंगे? तो रात दिन का फर्क है बाप का। तो बाप आकर के बोलती है देखो कितना फर्क है, बाप की बातों में और इन तुम्हारे सासुर की बातों में। शास्त्र लिखे है मनुष्यों ने और बाप जो बातें बताते हैं वो ओरिजिनल गीता है। तो बाप कहते हैं शास्त्रों से ही तुम्हारी दुर्गति हुई है और अगले कल्प में भी इन शास्त्रों से ही दुर्गति होनी है और एक ही दुर्गति नहीं सबकी ही दुर्गति होनी है। तभी तो कहा जाता है सर्व का सदगति रहता एक। तो अभी तुम जानते हो कि बाप जब आते हैं वो आकर के स्वर की स्थापना करते हैं क्या पहचान हुई बाप के आने की? कौन से बाप? लौकिक दुनिया के बाप या मनुष्य शक्ति के बाप? बाप को कहलाने वाले तो बहुत हो गए, ढेर के ढेर धर्म पिताएं हुए। सभी अपन को अपनी जनरेशन का बाप बताते, लेकिन सब मनुष्य हैं, कोई भी देवता नहीं। मनुष्य उन्हें कहा जाता है जिनका मन चंचल होता है। मन की औलाद को मन कहा, मन कहा, मनुष्य कहा जाता है। मनु ब्रह्मा को कहा जाता है। ये सब पुरुषार्थ है, मनुष्य है, ब्राह्मण है तो भी मनुष्य है। हाँ ब्राह्मण जब संपूर्ण बनती है तो देवता कहेगा। तो मनुष्य जिन्हें नर कहा जाता है वो नरक बनाते हैं। नर माना मनुष्य का माने करने वाला। मनुष्य क्या करने वाला है? नरक बनाता है। चाहे वो धर्म पिताएं हो और चाहे वो धर्म पिताओं का और सारे मनुष्यों का बाप प्रजापिता हो। प्रजापिता भी मनुष्य है या देवता है? पतित है या पावन है? पति तो है। तो सारी सृष्टि में जितने भी मनुष्य हैं, सब नरक बनाने वाले इस स्वर्ग को बनाता। स्वर्ग बनाने वाले की क्या काबिलियत और नरक बनाने वाले की क्या काबिलियत? नरक बनाने वाले मनुष्यों की काबिलियत ये है कि वो स्वाभिमान में नहीं रह सकते सदाकाल, देवर में आ जाते। इसलिए क्या बनाते हैं? नरक बनाते। एक ही आत्मा है त्रिलोकी में जो सदा स्वस्थिति में स्थित रहती। कौन? एक शिव बाप है आत्माओं का बाप, जो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता है। इसीलिए सदैव स्वर स्थिति में रहता है। तो वो एक बात ही आकर के स्वर की स्थापना करते हैं। अब बताओ बाबा आए या नहीं आए? आए, इतनी आंख देखा है। बाप की मुरली खुद ही बताती है कि बाप जब आते है तो ये पहचान है, वो आकर के स्वयं की स्थापना करते। एक सेकंड में गति आसद गति देती है। कितने साल हो गए आए बाप को है? 78 ईयर्स से भी ऊपर है। तो बाप ने आगे स्वर्ग स्थापन किया। आप ही क्या करते हैं, एक सेकंड में राजधानी स्थापन कर दीजिए। इसलिए उनको कहा जाता है हैविंग द गॉड फादर। ऐसे नहीं कि आए और 78 वर्ष तक नरक में ही गोता खाते रहे। तो हेवनली गॉड फादर हुए या नारकीय गॉड फादर हुए? बाप आया कि नहीं आया?
आया।
अरे आत्माओं का बाप आया। बच्चा घर में आता है वो सारी दुनिया कहती है ना बच्चा आया, नहीं कहती है? कहती आया। जब तक इस शक्ति पर नहीं आया, बच्चा पैदा हुआ नहीं, तो कोई नहीं कहता कि बच्चा आया या बच्ची आने वाली है कि नहीं आया। गुप्त है तो गुप्त को आया हुआ कहेंगे? अभी बाप गुप्त है या प्रत्यक्ष है? है गुप्त है। इसकी निशानी क्या है? बाप गुप्त है इसकी एक पक्की निशानी है। कौन बताएगा है? एक और निशानी है, वो निशानी हर बच्चे में देखी जाती है।
ये पंखा बंद करो, नहीं सुनाई पड़ता।
एक पक्की निशानी है, वो हर बच्चे के अंदर देखी जाती है, निश्चय और अनिश्चय की। बाप गुप्त है मन बच्चों को निश्चय अनिश्चय में आते हुए देखा जा सकता है, और जब बाप प्रत्यक्ष होता है, बाप की असली जयंती होती है, जय जयकार होती है, तो जो देखे इन आंखों से और जो सुने इन कानों से, जो शब्द भी सुने, तो क्या कहेगा? मेरा बाप आ गया। ब्रह्मा कुमार कुमारियों का ही नहीं, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों का ही नहीं, सारी सृष्टि में जो भी मनुष्य मात्र देखेगा क्या कहेगा? मेरा बाप आ गया, सारी सृष्टि का बाप आ गया।
उनको कहते हैं हेवनली गॉड फादर।
ये अक्षर बहुत अच्छा है, अर्थसहित है। बाप आया मैंने कौन आया है, हेवनली गॉड फादर आया। ऐसे नहीं आया, जिसमें आया उसका शरीर भी छूट गया, नरक में शरीर छूटा या स्वर्ग में छूटा, तो भी कहते हैं और फादर आया कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए। हेवन स्थापन करने वाला है ऋषि गॉड फादर।
उनकी विशेषता क्या है
जो और धर्म पिताओं में नहीं है, है?
उनकी स्पेशलिटी यही है
कि वो आते हैं और आते ही क्या कर देते हैं, हेवन स्थापन कर देते।
स्वर्ग स्थापन करते हैं,
कब स्थापन करते हैं, कब स्थापन करते हैं, जबकि है ये दुनिया नरक है, नरक के बीच में स्वर्ग स्थापन करते हैं। तो हैन का विनाश और हैन इनकी स्थापना, ये गायन है हेवनली गॉड फादर का। तो कब की बात है बता दिया, तो बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 वर्ष लगते हैं। तो तुम बच्चे जब सतो प्रधान बनते हो तो तुम्हारे लिए सतयुग होता है या कलयुग रह जाता है, हैं? सतयुग हो जाता है।
और
जहाँ तुम बच्चे नहीं हो उस सारी दुनिया में कलयुग होता है। तो ब्रह्मा द्वारा है भी इनकी स्थापना, ये कैसे ब्रह्मा द्वारा है भी इनकी स्थापना हुई, तो कैसे लिख दिया, कैसे बोल दिया मुझे, हाँ जी तो है, तो जरूर कोई ब्रह्मा है मुक्त जिसमें वो ब्रह्मा दादा देवरा वो आत्मा प्रवेश करती है, जगदम्बा महाकाली में महाकाली का चित्र देखा, मस्तक में क्या दिखाते हैं, चंद्रमा दिखाते हैं, वो चंद्रमा कौन है, वो ही दादा लेखराज ब्रह्मा। तो बताया ब्रह्मा द्वारा हेवन की स्थापना और शंकर द्वारा हेल का विनाश, ये बात तो समझ में आती है ना। सतयुग जब था इन्हें लक्ष्मी नारायण का राज्य, तुम बरोबर बस इनका ही राज्य होगा ना। जहाँ इनका राज्य होगा नर नारायण का, वहां असुर की तो कोई बात ही नहीं होगी। अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा यही देवता है जो फिर जाकर के असुर बनते हैं कलयुग में, आसुरी संप्रदाय बन जाते हैं। जो दैवी संप्रदाय है वो फिर आसुरी संप्रदाय, दो छठ की वाणी का साथ होती है। आसुरी संप्रदाय तो फिर दैवी संप्रदाय, आसुरी संप्रदाय और दैवी संप्रदाय कैसे बनते हैं ये बात तुम बैठ करके समझते हो क्या? तुम माने सन्मुख बैठने वाले समझते हो? सन्मुख बैठने वाले किसके? सन्मुख बैठने वाले हैं शिव बाबा के। शिव बाबा आया नहीं और तुम नहीं समझते हो? शिव बाबा आया
आया,
आया? अरे अभी तो बताया बच्चा आया तो सारी दुनिया कहेगी आया या नहीं आया। बच्चे का जन्म हुआ तो सारी दुनिया क्या कहती है, बच्चा आया या नहीं आया? तो आया नहीं। हाँ तो ये कहो कि नहीं आया। बच्चा पेट में भूत तो होता है तो कोई कहता है कि आया? तो अभी ज्ञान गर्भ में है या प्रत्यक्ष है? बाप बच्चों के द्वारा प्रत्यक्ष होते, बाप है दया का सदा ज्योति बिंदु। बिंदु कैसे प्रत्यक्ष होगा, कैसे प्रत्यक्ष होगा है? अरे जो भी धर्म के काय आए उनके फॉलोअर्स ने उनको पहचाना तो किस आधार पर पहचाना? ये हमारे धर्म के बीज है पिता है, उनकी निराकारी स्टेज के आधार पर पहचाना। रुद्रहीम हो, क्राइस्ट हो, महात्मा बुद्ध हो, गुरु नानक हो, उनके चेहरे को ध्यान से देखा दृष्टि को ध्यान से देखा चित्र नहीं देखा, क्या बात है उनमें जो मनुष्यों में नहीं है? उनके चेहरे से ही निराकारी स्टेज दिखाई पड़ती है। तो तुम बच्चों ने बैठ समझा तुम ही समझो और इस बात को न जाने को क्या कि भगवान कैसे निराकार। दूसरे धर्म वाले कहते हैं ना भगवान जो निराकार है साकार मानते हैं? नहीं मानते, परंतु ये नहीं जानते वो निराकार कैसे है। तुमने कैसे जान लिया वो निराकार है कि साकार है जब तुमने देखा ही नहीं? तो निराकारी स्टेज की बात है, जो जो आते जाते हैं देखो
ये जबलपुर से आया, पहले जबलपुर में कोई सेंटर था क्या? जबलपुर में ये बच्चे जानते थे, कुछ भी जानते थे, इनको क्या मालूम था? जब सेंटर खुला तो देखो कितने बच्चे ब्राह्मण बन करके और अच्छी अच्छी बच्ची आई। बस देखो ये बच्ची भी शायद जबलपुर की थी। बस कहा बाबा जल्दी ये दुनिया खत्म हो, हम चले हैं आपके साथ अपने शांति धाम में और फिर सुखदाम। अभी तो यहाँ बहुत दुख है, हमारा पति हमको भिख के लिए बहुत तंग करता है। बच्ची तुम एक थोड़े ही हो, तुम सभी द्रौपदियाँ हो और ये नंदन करने वाले सभी दुशासन हैं। अब कब दुशासन है? जबकि आसुरी संप्रदाय है, असुरों का काम करते हैं। असुरों का काम क्या है? है जोर जबरदस्ती करना, असुर जो है वो अपना बल दिखाते हैं। देवताएं बाहुबली होंगी क्या? देव आत्माएं बाहुबली नहीं हो सकती। अभी तो बाप आए हुए तो एक द्रौपदी की बात नहीं है, एक दुशासन की बात है। बाबा के पास आकर के बहुत रोके, बाबा ये दुशासन हमको मनन करके हमको मारते हैं, बहुत पीटते हैं, पीट पीट करके बाहर निकाल देते। वो बोल रहा है चली जाओ यहाँ से। बाबा अब हम क्या करें? बाबा कहते हैं आया है शरणागत देने के लिए। कौन आया है शरणागत देने के लिए? कौन आया है? अरे अरे बाबा आया है। तब तो कहती है शरण करी मैं तेरी, परंतु बाबा कहते हैं बच्चे ये फिर तुम्हारे बाल बच्चे वहां याद आई और फिर तुमको बाबा की गोद लेने से तो जरूर याद आई। अब जब एक ही शरण लेती हो तो तुम्हारा गायन है बाबा, जब तुम आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे। हमारा तो आप बनेंगे, दूसरा न कोई। अभी दूसरा न कोई का अर्थ ये नहीं है
कि तुम सब आकर के यहाँ बैठ जाएंगे, नहीं ये तो ग्रस्त व्यवहार में रह करके फिर तुमको याद करना है। बाबा कहती है, बाबा ये सब तो मेरे नहीं है, जानती हूँ कि ये हमारा देह भी मेरा नहीं, ये देह सहित जो भी देखते हैं इस दुनिया में वो सब विनाश हो जाएगा। तो बाबा घर में बैठ कर मैं क्या करूंगी, बाबा मैं तो तेरी हूँ। तो बाबा कहते हैं ऐसे बैठकर घर में याद करो, बाबा अभी तो हम तेरी हो, अभी मैं कोई भी पाप कर्म नहीं करूंगी, मैं आत्मा क्या नहीं करूंगी, कोई भी पाप कर्म कर नहीं करूंगी। पाप कर्म क्या होता है, पति विकार के लिए माता है, जोर जबरदस्ती करता है, मार मार के इंद्रियों को उत्तेजित करता है, तो पाप कर्म नहीं होगा है? होगा या नहीं होगा, क्यों? बाप ने तो उदाहरण दिया है, महबूब अपनी महबूबा की याद में कारखाने जाता है, वहां जाने के बाद कोई उससे पूछता है तुमने रास्ते में किसको किसको देखा, तुम खुली आंखों से आए थे या बंद आंखों से हैं? तो किसको किसको देखा, कहता मैंने किसी को नहीं देखा। ऐसा क्यों कहता है, है? हाँ, क्योंकि आंखें बल खुली थी इंद्रियां, लेकिन खुली हुई इंद्रियों ने भी किसी को नहीं देखा, क्योंकि मन दूसरी ओर लगा हुआ था। तो ऐसे ही बाप कहते हैं, तुम्हारा मन मेरे में लगा हुआ है होगा, तो तुम्हारी इंद्रियों से कोई पाप नहीं होगा। इसमें भी सबसे बड़ा पाप कौन सा है? सबसे बड़ा पाप है काम विकार का सुख भोगना, और सुख है केवल स्थूल इंद्रियों के द्वारा भोगा जा सकता है, यह मन का भी सहयोग चाहिए है? मन का भी सहयोग चाहिए, मन सहयोग नहीं देगा बाबा की याद में लगा हुआ होगा तो कोई पाप कर्म नहीं बनेगा, सुख का अधिकारी सुख का अनुभव भी नहीं होगा, जिस सुख भोगने से पतित बनते हैं तो वो काम विकार कोई क्रोध नहीं है, नहीं ये काम विकार में मैं नहीं जाऊंगी। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, देखो बाप कहते हैं ना, ऐसे नहीं कहते हैं क्रोध महाशत्रु है, नहीं काम महाशत्रु है। काम की आशा पूरी न होने से फिर क्रोध में आती है, फिर क्रोध में आकर के तुम घुमाते। तुम अबलाओं के ऊपर ये अत्याचार होते हैं, ये तो शुक्र करो जो बांधे लिए हो, और पवित्र बनने के लिए मार खाती हो, ये तो तुम्हारा अहो भाग्य है, क्योंकि तुम वही कलप पहले वाली हो जो बैठ करके बाप से महारानी पटवानी बनती हो। तो थोड़ा सहन कर लिया, कोई ने मारा बिके के लिए या जबरदस्ती किया, और तुम्हारी कोई कामना नहीं है, तो पाप सारा उन मारने वालों के ऊपर जाता है। कोई तुम्हारे ऊपर पाप थोड़े ही होता है, ये तो सब बना है क्या, ड्रामा बना है, कोई डरने की बात नहीं। भीख मांगते हैं, तो देखो मिनिस्टर को बैठा ही दिया है कांटों पर, वो साधु लोग बैठते हैं ना, वकीलों का कट बनाए करके बैठते हैं। रमेश बच्चे कभी देखा है, रमेश भाई ने कहा खटोला कट, ये संदली बनाते हैं ना, उसमें कीला लगाते हैं, जबकि वहां जाओ कुंभ के मेले पर ये सारे खेल कुंभ के मेले पर होते हैं, पीछे वो भीख मांगते हैं। तो देखो ये भी अभी कांटे के ऊपर बैठे हैं, ये कांटे का कट है, फॉरेस्ट का फार्म है, ये प्राइम मिनिस्टर यानी गवर्नमेंट का कहां, देखो ये कहां भीख मांग रही है, और ये साहब लोग उनको कहां दाना दे रहे हैं। गवर्नमेंट विलायती है तो कोई डरने की तो बात नहीं है, ये तो फेंकते हैं ना, साहब लोग जो पाना लेते हैं वो फेंकते हैं ना, और ये क्या कर सकते हैं, इन्होंने जो फेंका ये कहां से निकाला, ये निकाला ही है अखबारों से। अखबार में पड़ा हुआ था और यहाँ भी डाल दिया, तो एग्जीबिशन में ये भी दिखलाते हैं उनको, देखो ये भारत की गवर्नमेंट का ये हाल है। परंतु जो भी सूर्यवंशी देवी बुद्धि वाले होंगे ना, जो भी ब्राह्मण धर्म वाले होंगे, वो ही समझेंगे। कि भारत की गवर्नमेंट का कैसे हाल कंगाल है। दूसरा देखेगा हाँ ये है तो बहुत राइट, इतना ही बोलेंगे बस, हालांकि कितना ही कहेंगे ये तो है बहुत राइट। इसलिए अभी बाबा वो कोर्ट ऑफ आर्म्स की बने रहे, ये यादव ये कौरव ये पांडव क्या करते भाई, तो बाबा यादवों का यूरोपवासियों का भी कोर्ट ऑफ आर्म्स बनाए गए। और कौरवों का भी बनाए नहीं, ये जो इनके हैं शेर और डाल दिया है सत्य में वजह से। फिर लगा दिया है चरखा, और अभी देखो तुम ब्राह्मणों का ये चरखा तो है नहीं, क्या है, है? सच चक्र है या चरखा है? ये तो चक्र है, उस गांधी ने वो चरखा रख दिया और नीचे में लिख दिया है कि जनावर और चरखा और सत्य में भी देखे। कौन से जनावर? भारत की गवर्नमेंट का जो कोर्स ऑफ आर्म है तीन शेरों वाला, वो तीन शेर जानवर है या मनुष्य है? तो जनावर और चरखा लगे जी, और ये गदिया सत्य देव जयंती विजयंती, अभी इस चरखे में तो जयंती और विजयंती की कोई बात ही नहीं। ये तो सृष्टि चक्र की बात है कि जब भगवान बाप आते हैं तो सच्ची सच्ची शिव जयंती होती है। तो इनके बाद में फिर ये आएंगे सभी बच्चे, सच्चे सच्चे बच्चे। तो वहाँ लिखा हुआ है विनाश काले प्रीति बुद्धि सत्यमेव जयंती, और उनके लिए लिख दिया है सत्यमेव जयंती, क्योंकि भगवान बाप से विपरीत बुद्धि विनयती, और विपरीत बुद्धि भी बड़ी विपरीत बुद्धि, तुम सिद्ध करके बताते हो, तुम जो तो समझते हो उस बात में भारत की गवर्नमेंट ठीक बुद्धि है या विपरीत बुद्धि है? है विपरीत बुद्धि है। और सिर्फ विपरीत बुद्धि नहीं, बड़ी विपरीत बुद्धि। तुम सिद्ध करके बता सकते हो। तुम कह सकते हो कि तुम भगवान को गालियां देते हो, तुम गालियां देते हो कि ये तुम्हारी विपरीत बुद्धि है। तुम कहते हो विपरीत बुद्धि उसकी होती है जिसको गाली दी जाती है। दुश्मन का दुश्मन, क्या तुम कहते हो कि वो पत्थर पत्थर में है, बेहतर बेहतर है, कुत्ते का बच्चा, उल्लू का बच्चा, काली का बच्चा, ये गंदी गंदी गाली देती है। जैसे आजकल मनुष्य गाली देते हैं बच्चों को, ये कुत्ते का बच्चा, ये उल्लू का बच्चा, ये सूअर का बच्चा, ऐसे बोलता है मुझे तुम गाली दिया। जो मैं तुम भारतवासियों को आकर के कितना सतोपदान बनाता, तो बोला ये वंडरफुल खेल है, ये बाप बैठ करके वंडरफुल बातें बताते। कृष्ण बेचारा वो तो, और उस बेचारे के ऊपर कितनी प्लानिंग कर दी कि कृष्ण बच्चे को 108 रानियां थी, अब बच्चे को 108 रानियां कैसे होंगी, नौजवान को होंगी या बच्चे को होंगी, आज रानी उनको बगाया, ये किया वो किया, मटकी खोल, अरे उनको कोई मक्खन की परवाह या कोई बात की परवाह, और फिर सर पर डांस किया काली देखने, सत्य किसे कहा जाता है, है? अरे काम करो तो लोग वो अहंकार यही क्या है, सत्य ही तो है। उन पर ज्ञान डांस करने की बात है, और दिखाते उसको रख लिया सर्पों ने तो काला पड़ गया, भक्ति मार्ग में कृष्ण को कैसे रंग का दिखाते, काला दिखाते, ये सब क्या है, ये तो सभी ज्ञानी ही ज्ञानी की बातें हैं। कृष्ण के लिए ज्ञानी, रामचंद्र के लिए ज्ञानी, उनकी सीता भाग गई, ये बंदरों का लश्कर लिया, अरे कभी कोई मनुष्य बंदरों का लश्कर लेते हैं क्या? तो देखो ये जो पादरी लोग हैं ना, ये लोग ऐसे ऐसे लेकर दे करके कन्वर्ट कर लेते हैं अपने धर्म, बोलते हैं तुम्हारे भगवान रामचंद्र की सीता चुराइए, और फिर तुम कहते हो कि उन्होंने बंदरों का नष्ट कर लिया, ये क्या तुमको शर्म नहीं आता है इन बातों को मानते हुए? देखो हमारा क्राइस्ट है हस्ता, वो ये है, वो है, और तुम्हारी तो बुद्धि भ्रष्ट है, इसलिए तुम ऐसे को भी भगवान मान लेते हो। तुम्हारे शास्त्रों में तो लिखा है जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, क्या मतलब? जहाँ सुमति माने सुंदर बुद्धि है, वहाँ नाना प्रकार की संपत्ति होती है, और जहाँ सुमति तहाँ विपत्ति निधान, और जहाँ बुरी बुद्धि होती है, भ्रष्ट बुद्धि होती है, वहाँ अनेक प्रकार की विपत्तियाँ आती हैं। अब देखो हमारे पास तो कितना धन है, कौन कहते हैं किसी लोग, हमारे पास तो कितना धन है, तुमको तो मिलता है 10 रुपया, तुम जो कमाई करते हो तुमको मजदूरी 10 रुपया की मिलती है, और हम तुमको 100 रुपये का पगार देते हैं। वो कितने के कितने कन्वर्ट करते थे, क्रिश्चियन लोग ऐसे बोल बोल करके, ऐसे ऐसे बड़े बड़े लेक्चर्स करते थे। बाबा ने बहुत सुना हुआ है कि तुम्हारा ये राम ऐसा, तुम्हारा कृष्ण ऐसा, तो ये ग्लानी हुई ना, गाया जाता है। भारतवासियों ने जो अपन को हिंदू कहलाने में आते हैं, अपने आप को ही चमाट मानी कैसे, वो उन्होंने जो लिखा है और हमको ऐसी ऐसी बातें बोली है दूसरे धर्म वालों ने, वो बातें किस आधार पर हमको बोली? शास्त्रों के ज्ञान पर। अपने आप को ही तुमने अपनी कुछ क्षमा करी है, भक्ति मार्ग की अंधश्रद्धा की उन बातों को मान करके जो शास्त्रों ने लिखी हो, ये सभी लिख करके शास्त्रों में कैसी कैसी तुम्हारी गिलानी हुई है, जो तुम सब बैठ करके दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए, क्या था? तो बाप बैठ करके समझाते हैं बच्चों को, अरे आज गुरुवार है, अभी बाबा बंद करते हैं, नीचे से नीचा बाबा, सड़क का मालिक बनाने वाला, वो सिर्फ कहते हैं बच्चों को कि हे बच्चे ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, इस अंतिम जन्म के बाद फिर तुम्हारा इस कलयुग की दुनिया में कोई जन्म नहीं होगा, मरना भी जरूर है तुम बच्चों को, और सबको वापस कर जाना, तो मरने के पहले तुम तमोक दान से सतु ज्ञान बनकर हमारे से बात चाहिए लो, मैं बात सही लेने की बहुत सहज युक्ति बताता हूँ। ओम शांति।